जागो लोगो जगत के, बीती काली रात हुआ उजाला धर्म का, मंगल हुआ प्रभात।
अध्यात्म के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचने की यात्रा बहुत लंबी यात्रा है, बहुत लंबा पथ है। पर कितना ही लंबा पथ क्यों न हो, हजारों मील लंबे पथ की भी यात्रा पहले कदम से ही होती है। जिसने पहला कदम उठा लिया उससे आशा की जा सकती है कि वो दूसरा उठाएगा, तीसरा उठाएगा और यूं कदम कदम बढ़ते हुए अंतिम लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। पर कदम तो उठाना होगा ही, चलना तो स्वयं ही होगा। चलेंगे नहीं, सारे मार्ग की चर्चा करते रहेंगे, उस पर वाद विवाद करते रहेंगे, और चलेंगे भी तो उल्टी दिशा में चलने लगेंगे, तो भाई अंतिम लक्ष्य तक कहाँ पहुंचेंगे? कोरी चर्चाओं में क्या पड़ा है, मार्ग पर चलना है। चर्चा तो बहुत करते रहे, पाठ बहुत करते रहे, हम करते हैं ना, गीता का पाठ करते हैं। एक श्लोक है गीता का, उत्क्रमन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं गुणान्वितं विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। विमूढ़ लोग नहीं देख पाते, विपश्यना नहीं कर पाते। विपश्यना करते हैं तो ज्ञान के चक्षु खुलते हैं, और ज्ञान के चक्षु खुलते हैं तो ही विपश्यना करते हैं। क्या विपश्यना करते हैं? भीतर की सच्चाई का दर्शन करना शुरू कर देते हैं। उत्क्रामंतं, हमारे मानस के चार खंडों में से पहले खंड अपना सिर उठाया, कुछ हुआ, इंद्रिय के किसी दरवाजे पर कुछ खटपट हुआ, इतने में स्थितं मानस का दूसरा खंड रुकता है, पहचानता है, मूल्यांकन करता है। इतने में संवेदनाएं चलने लगती हैं, सुखद होती हैं, दुखद होती हैं, तो उसका सुख भोगने लगता है, दुख भोगने लगता है, भुंजानं भुंजानं। और जैसे ही भोगता भाव से भोगने लगा कि राग जगाने लगा, द्वेष जगाने लगा, तो गुणान्वितं गुणान्वितं लगा बंधने, लगा बंधने। अरे भाई, इस सच्चाई को अपनी अनुभूतियों पर नहीं उतारेंगे तो अपना कल्याण कैसे करेंगे? केवल पाठ करने से कुछ नहीं होता। भगवान महावीर की वाणी का पाठ करते हैं, आयत चक्षु लोक विपश्यसि। लोग कहते थे काया को उन दिनों की भाषा में, जो अपनी काया के भीतर विपश्यना करने लगा, आयत चक्षु, उसे चक्षु प्राप्त हो गए, अंतर चक्षु प्राप्त हो गए, ज्ञान के चक्षु प्राप्त हो गए, प्रज्ञा के चक्षु प्राप्त हो गए। विपश्यना करे तो प्राप्त हो ना, कोरे पाठ करने से क्या होता है? आज के 2500 वर्ष पूर्व भी यही हालत थी, पाठ चलते थे। ऋग्वेद का पाठ करने वाला एक व्यक्ति ऋग्वेद की इस ऋचा का पाठ करता है,
यो विश्वाभि विपश्यति भुवन संच पश्यति सेने पार्षदति द्विष।
यो विश्वाभि विपश्यति भुवन, जो विपश्यना करता है इस सक्षण के सच्चाई के प्रति सजग हो करके अपने भीतर विपश्यना करता है, सम्यक रूप से करता है, वह सारे द्वेषों से पार हो जाता है। विपश्यना करता है तो पार हो जाता है ना भाई, केवल पाठ करे तो कैसे द्वेष के पार हो जाएगा। उस सन्यासी गृह त्यागी सिद्धार्थ गौतम ने यही तो देखा, कोई रास्ता होना चाहिए जो हमें राग के पार उतार दे, द्वेष के पार उतार दे, जो हमें वीत राग बना दे, वीत द्वेष बना दे, वीत मोह बना दे, सारे विकारों से मुक्त कर दे। भिन्न भिन्न प्रकार की उस समय की प्रचलित भिन्न भिन्न प्रकार के साधनाओं का अभ्यास करके देखा, नहीं नहीं पहुंच पाए। तो खोजते 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 ये विपश्यना विद्या खोज निकाली और इसके सारे 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 शुद्ध बन गए, बुद्ध बन गए, नितांत विमुक्त बन गए, जीवन मुक्त हो गए। तो कहते हैं, पुब्बे अननुसुत्ते सुधम्मेसु चक्खुंगुतपादि। अरे पहले कभी सुना ही नहीं, कभी सुना ही नहीं इस धर्म में। मेरे चक्षु खुल गए, मेरे अंतर चक्षु खुल गए, प्रज्ञा चक्षु खुल गए, ज्ञान चक्षु खुल गए, तो मुक्त हो गया। पहले सुना ही नहीं, केवल शब्द सुन लेने से बात नहीं बनती, उन शब्दों का अर्थ ही लुप्त हो जाता है। जब काम नहीं करते, उसका अभ्यास नहीं करते, तो शब्दों के अर्थ ही लुप्त होते चले जाते हैं। सचमुच अंतर प्रज्ञा जागे, सचमुच अंतर चक्षु जागे, तो भीतर की सच्चाइयों को यथाभूत देखना शुरू कर दे। ये शरीर और चित्त का प्रपंच कैसे काम करता है, किस प्रकार एक दूसरे को प्रभावित करता है, परमाणुओं के पुंज उत्पन्न होते हैं नष्ट होते हैं, उत्पन्न होते हैं नष्ट होते हैं, चित्त प्रतिक्षण उत्पन्न होता है नष्ट होता है, उत्पन्न होता है नष्ट होता है, और कैसे एक से दूसरा प्रभावित होता है, ये सारा प्रपंच भीतर का देखने लगे तो सारा रहस्य खुल जाए, कुदरत का सारा रहस्य खुल जाए। क्यों विकार जागते हैं, कैसे विकार जागते हैं, अरे कैसे उनका संवर्धन होता है, कैसे उन्हें रोका जा सकता है, कैसे उन्हें निकालते 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 नितांत विमुक्त अवस्था प्राप्त की जा सकती है। ये जो ऊपर ऊपर का चित्त है, जिसे उन दिनों की भाषा में परित चित्त कहा, परिमित चित्त, छोटा सा चित्त, जिसे आज के पश्चिम के वैज्ञानिक कहते हैं कॉन्शियस माइंड, बड़ा छोटा सा माइंड, और बाकी सारा का सारा हाफ कॉन्शियस अनकॉन्शियस, और इन दोनों के बीच में बहुत मोटी दीवार पड़ी है। जिसे कॉन्शियस माइंड कहते हैं उसे पता तक नहीं कि भीतर क्या हो रहा है, भीतर ही भीतर कितना प्रपंच चल रहा है, भीतर ही भीतर कैसे विकार जाग रहे हैं, उनका संवर्धन हो रहा है, ये सारा प्रपंच पता ही नहीं लगता। विपश्यना का काम आरंभ करते हैं तो ये दीवार टूटती है, जिसे कॉन्शियस माइंड कहते हैं, चेतन चित्त कहते हैं, दीवार टूटती है उसके आगे की और सारा का सारा चेतन हो जाता है, भीतर तक कुछ भी अचेतन नहीं रहता।
वैसे हमारे यहाँ के महापुरुषों ने ये चेतन अचेतन इस प्रकार के शब्द नहीं इस्तेमाल किए, कॉन्शियस अनकॉन्शियस नहीं, परित परमित है, छोटा सा है, भीतर क्या हो रहा है उसकी जानकारी नहीं है। अब उसकी जानकारी होने लगी, क्या हो रहा है, जब जानकारी नहीं है तो भीतरी भीतर संवेदनाओं की अनुभूति हो रही है। प्रतिक्षण जहां जहां जीवन है, प्रतिक्षण वहां कोई ना कोई संवेदना हो रही है, कण कण में अणु अणु में संवेदना हो रही है। ये बेचारा ऊपर ऊपर का चित्त जाने ही नहीं क्या हो रहा है। दीवार टूटती है तो एक एक अणु की संवेदना महसूस होने लगती है, उत्पन्न हो रहा है नष्ट हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है नष्ट हो रहा है। अरे अनित्य है, अनित्य है, नश्वर है, भंगुर है। इसे अनुभूतियों से जानते 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 यात्रा हमें सारे अनित्य अवस्थाओं में से गुजरते हुए उस नित्य शाश्वत ध्रुव तक पहुंचाने की यात्रा है। अनित्य के रास्ते से नहीं गुजरेंगे तो न जाने कौन सी अनित्य की अवस्था हमें पकड़ के रह जाएगी, और इस भ्रांति में, इस भ्रम में कि बस नित्य प्राप्त हो गया, शाश्वत प्राप्त हो गया, ध्रुव प्राप्त हो गया, धोखे में रह जाएंगे। तो सारी की सारी स्थूल से स्थूल अवस्थाओं से लेकर सूक्ष्म से सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्म, जो जो अनित्य का क्षेत्र है, शरीर और चित्र का क्षेत्र है, सारी इंद्रियों का क्षेत्र है, उस सारे क्षेत्र का अनुसंधान करना है। होता जाएगा अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है, तरंगे ही तरंगे, बुदबुदे ही बुदबुदे, इतने ही सूक्ष्म, इतने ही सूक्ष्म। एक अवस्था आएगी, एक स्थान पर केवल मुट्ठी के जितनी जगह ऐसी है कि लगता है यहाँ तो कोई उत्पाद व्यय नहीं हो रहा, अरे कहीं ये तो ध्रुव नहीं। तो किया जाएगा विपश्चन, प्रज्ञा का अभ्यास किया जाएगा। प्रज्ञा का काम यही है, छेदन करती है, भेदन करती है, टुकड़े टुकड़े करती है, विभाजन करती है, विघटन करती है। तो टुकड़े होते 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 वो जो मुट्ठी के जितनी बड़ी जगह थी, टूटते टूटते एक अंगुष्ट प्रमाण, अंगूठे के जितनी जगह रह गई, और फिर उसका भी भेदन हो रहा है, छेदन हो रहा है, भेदन हो रहा है, छेदन हो रहा है, एक तिल के समान जगह रह गई। कहीं ये तो नित्य नहीं, ये तो शाश्वत नहीं। देखे जा रहा है, देखे जा रहा है प्रज्ञा द्वारा उसको, तो बिंधन हो रहा है, छेदन हो रहा है, भेदन हो रहा है। अरे टूटा वो भी तो छिंदति हृदय ग्रंथि, भिंदन्ति सर्व संशय, सारे संशय दूर हो गए। ये सारे अनित्य के क्षेत्र में कैसी भ्रांति पैदा कर रखी, ये नित्य है, ये नित्य है, ये नित्य है, अरे नहीं नित्य है, शरीर और चित्त के परे की अवस्था है, सारी इंद्रियों के परे की अवस्था है, जहां इंद्रियां काम करने बिल्कुल बंद कर देगी, उस इंद्रियातीत अवस्था को नित्य शाश्वत ध्रुव ये कह सकते हैं। ये है नित्य है, शाश्वत है, ध्रुव है, लेकिन अनिर्वचनीय है। किन शब्दों में समझाया जाए, इंद्रिय जगत में विचरण करने वाला इंद्रियातीत अवस्था की अनुभूति करके फिर इंद्रिय जगत में आया, क्या बोले। जो अनुभव इंद्रियातीत अवस्था में हुआ वो फिर इंद्रिय जगत में इंद्रियों के सहारे क्या समझाए, और समझाए तो कैसे समझाए, मुंह बंद हो जाता है, बोल ही नहीं सकता। तो संत कहता है कि ठाकुर मिल गया ओ तिलयोले, ठाकुर मिल गया तिलयोले, मन मगन भया अब क्या बोले, मन मगन भया अब क्या बोले। वो परम सुख की अवस्था, गूंगा हो जाता है उसके बारे में क्या कहे, जो कहता है उसके बारे में समझ लेना चाहिए उसे साक्षात्कार नहीं हुआ है, उसे अनुभूति नहीं हुई है, इसीलिए बातें करता है। वो अवस्था का वर्णन नहीं हो सकता, अनिर्वचनीय है, किन शब्दों में समझाए। तो कहा बोले सो देखे नहीं,
बोले सो देखे नहीं और देखे बोलन पाए। जो बोलता है उसने देखा नहीं भाई,
जो देख लेता है साक्षात्कार कर लेता है वो क्या बोलेगा, बोल नहीं पाएगा।
अरे गूंगे कीरी शर्करा, गूंगे कीरी शर्करा, ओ चाख चाख मुस्काए, क्या बोलेगा,
उसका भाव बताएगा, उसका जीवन बोलेगा। अब यह आदमी बिल्कुल बदल गया, संत हो गया, कैसे समझाएगा कि उसे क्या अनुभूति हुई, कैसे बताएगा क्या साक्षात्कार हुआ, किसका दर्शन हुआ। अरे उसका कोई रंग नहीं, उसका कोई रूप नहीं, उसकी कोई आकृति नहीं, कैसे समझाए। लोग पीछे पड़े तो क्या कहे, यही कहता है
कि रूप नहीं रेख नहीं, रूप नहीं रेख नहीं, ओ श्वेत नहीं श्याम जी, श्वेत नहीं श्याम जी। अरे उसका कोई रूप है न रंग है न रेख है, न वो सफेद है न वो काला है। कि तुम सदा एक रस राम जी, राम जी तुम सदा एक रस। वो एक रस अवस्था है,
उसे कोई चाहे जिस नाम से पुकारे। अरे उसका साक्षात्कार होना चाहिए ना, उसकी अनुभूति होनी चाहिए ना, अन्यथा तो लड़ते ही रह जाएंगे। मेरा राम तेरा रहीम, मेरा कृष्ण तेरा करीम, आप डंडे रह गए ना, मशाल की रोशनी तो खत्म हो गई, धर्म तो खत्म हो गया, अध्यात्म की अनुभूति तो रही नहीं, तो सिवाय झगड़े की और क्या होगा। अनुभूति होगी तो देखेगा किस प्रकार, एक एक कदम, रास्ता बड़ा लंबा है लेकिन फिर भी एक एक कदम, एक एक कदम देखो कल्याण हुए जा रहा है, एक एक कदम। जैसे जैसे अंतर्मुखियों के सच्चाई को देखता चला जाएगा, देखेगा देख विकार जागा। और क्या हुआ विकार जागते ही, कैसे मन पर जागा हुआ विकार शरीर पर अपना प्रभाव प्रकट करने लगा। ये शोणित प्रवाह करने वाली धमनियों में एक तरह का जीव रसायन, एक बायोकेमिकल का प्रवाह होना शुरू हुआ। क्रोध जागा तो एक तरह का बायोकेमिकल, उन दिनों की भाषा में उसे आश्रव कहते थे, आश्रव का माने बहाव और आश्रव का माने नशा भी, एक बहाव बहने लगा। क्रोध जगा, एक रसायन का बहाव बहने लगा, आश्रव बहने लगा। बड़ा दुखदाई, बड़ा कष्टदाई, और क्योंकि बड़ा कष्टदाई है ऐसा बहाव बहा कि क्रोध और ज्यादा तेज हुआ, क्रोध और तेज हुआ, आश्रव और तेज हुआ, आश्रव और तेज हुआ, क्रोध और तेज हुआ। अरे विश्व सर्कल, दुष्चक्र ही दुष्चक्र, व्याकुलता ही व्याकुलता। ठीक इसी प्रकार वासना जगाई तो उस वासना के अनुसार एक रसायन बहने लगा, वो रसायन बहने लगा वासना बढ़ने लगी, वासना बढ़ने लगी रसायन बढ़ने लगा। अरे दुष्चक्र ही दुष्चक्र, गहराइयों से जाकर के ये विद्या प्राप्त हो जाए तो इस चक्र को तोड़ दिया जाता है। विकार तो जागा, हमारी नासमझी से जागा, पर जागा। और अब देखिए बहाव बहने लगा और उसकी एक प्रकार की संवेदना होने लगी। अब इसे हम साक्षी भाव से देखते हैं, हम नहीं प्रतिक्रिया करते, हम इसकी वजह से नया विकार नहीं जगाते, बस रोक लगने लगी। इस रोक लगाने में जितना जितना सफल हुआ उतना उतना विकारों के निष्कासन में सफल हो गया। स्वभाव बदलने लगा, प्रकृति बदलने लगी, तो आदमी बदलने लगा, उसका जीवन बदलने लगा। ये काम स्वयं करना पड़ता है ना भाई। दो शब्द विपश्यना के पुराने साहित्य में दो शब्द आते हैं, नति गति। नति कहते हैं झुकाव को, किस ओर झुका हुआ, और गति कहते हैं उस ओर चलायमान हो गया। तो हमारे चित्त ने प्रतिक्रिया की, क्रोध की प्रतिक्रिया की तो उस ओर झुकाव हो गया, क्रोध की ओर झुकाव हो गया, उसी ओर गति जा रही है। अब बार बार क्रोध करता है, बार बार क्रोध करता है और अपने को व्याकुल बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है। लोभ की नति उस ओर झुका हुआ कि राग की नति, कि वासना की नति, कि भय की नति, किस ओर झुका हुआ? जिस ओर झुका हुआ उस ओर गति चल पड़ी, नति गति नति गति। अरे हम मालिक हैं अपने, अत्ता ही यत्तनो नाथो, अत्ता ही यत्तनो गति। यह नति हमने बनाई ना, तो गति हम नहीं बनाई ना, ना समझी से बनाई तो अवनति ही अवनति, ना समझी से बनाई तो दुर्गति ही दुर्गति, समझदारी से बनाई तो सदगति ही सदगति, उन्नति ही उन्नति। हम मालिक हैं भाई, चलें तो धर्म के रास्ते, शील का पालन करें कल्याण ही कल्याण, समाधि का पालन करें कल्याण ही कल्याण, प्रज्ञा का पालन करें कल्याण ही कल्याण, धर्म के रास्ते में कल्याण ही कल्याण, विपश्यना के रास्ते में एक एक कदम कल्याणकारी, खोते कुछ भी नहीं, बड़ा मंगल बड़ा कल्याण। धर्म में मंगल ही मंगल, कल्याण ही कल्याण, मंगल ही मंगल, कल्याण ही कल्याण।
आदि माही कल्याण है, मध्य माही कल्याण, अंत माही कल्याण है, मंगल पंथ महान। जागो लोगो जगत के, बीती काली रात, हुआ उजाला धर्म का, मंगल
धर्म का शुद्ध स्वरूप कायम हो। धर्म पर जो संप्रदाय के छिलके लग गए, इन छिलकों ने धर्म को छिपा लिया, इन छिलकों को दूर करें, धर्म का शुद्ध रूप उजागर होगा तो धर्म का वर्चस्व बढ़ेगा, अन्यथा संप्रदायों का वर्चस्व बढ़ता जाएगा और देश में विश्व में अशांति ही अशांति रहेगी। धर्म का शुद्ध स्वरूप जो सब के लिए एक सा है, वही धर्म हो तो धर्म का शुद्ध स्वरूप है। जो सार्वजनीन है, सबका है, सबको समान रूप से कल्याण प्रदान करता है, सबका समान रूप से मंगल करता है, तो धर्म है। जिसमें जाति जाति को लेकर भेद नहीं होता,
जिसमें वर्ण गोत्र को लेकर भेद नहीं होता, जिसमें रंग रूप को लेकर भेद नहीं होता, जिसमें देश प्रदेश को लेकर भेद नहीं होता, जो सबका है, कुदरत का कानून सबका है, निसर्ग के नियम सबके लिए एक जैसे हैं, ये समझते रहें तो देखेंगे धर्म अपने शुद्ध रूप में कायम हो रहा है। जितना जितना विपश्यना का अभ्यास करते चले जाएंगे, अपने भीतर निसर्ग के नियमों का दर्शन करते चले जाएंगे, सच्चाई का दर्शन करते चले जाएंगे, उतना उतना स्पष्ट होते चले जाएगा। अरे भाई, धर्म तो सबका है ना, धर्म तो सार्वजनीन है ना, सार्वदेशिक है ना, सार्वकालिक है ना, नहीं तो धर्म कैसे हुआ? इस मापदंड से मापते रहेंगे धर्म की शुद्धता को, इस मापदंड से मापते रहेंगे सार्वजनीन है या नहीं। कोई भी कह सकता है कि मैं जिसे धर्म कहता हूं वो भी तो सार्वजनीन है, कोई पालन करे तो उतना ही कल्याण होगा। लेकिन पालन करने में भी तो सार्वजनीनता चाहिए। अगर पालन करने वाले को हिचक हो कि मैं कैसे पालन करूं, ये तो मेरे लिए ठीक नहीं है, तो कठिनाई खड़ी हो जाएगी ना। एक आदमी भली भांति सोच समझ करके देखे कि भाई मैं शील का पालन करता हूं, अपने शरीर से अपने वाणी से किसी की शांति भंग नहीं करता, किसी की हानि नहीं करता, किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाता, तो अच्छी बात, इसमें बुरी बात क्या? जब मैं अपने शरीर या वाणी से किसी को भी हानि पहुंचाता हूं तो पहले अपनी हानि करने लगता हूं, क्योंकि अपने भीतर विकार जगाता हूं, और ये कुदरत का नियम तो ऐसा है कि विकार जगाते ही मैं स्वयं व्याकुल हो जाता हूं। तो भाई, अपने भले के लिए, औरों का भला तो पीछे, पहले अपने भले के लिए मैं शरीर और वाणी से किसी को हानि न पहुंचाऊं, किसी को पीड़ा न पहुंचाऊं। इस बात को स्वीकार करने में किसी भी जाति के व्यक्ति को क्या इतराज होगा, किसी भी वर्ण के व्यक्ति को क्या इतराज होगा, किसी भी समाज के व्यक्ति को क्या इतराज होगा, किसी भी देश के व्यक्ति को क्या इतराज होगा, किसी भी बोली भाषा के व्यक्ति को क्या इतराज होगा? सार्वजनिक बात, अपने भले के लिए भी लोग स्वीकार करेंगे, औरों के भले के लिए भी स्वीकार करेंगे। और फिर धर्म का अगला कदम, भाई शील सदाचार का जीवन जीना है अपने भले के लिए भी, औरों के भले के लिए भी, तो मन तो वश में होना चाहिए ना। तो मैं अपने मन को वश में करने की कोई प्रैक्टिस करूं, कोई एक्सरसाइज करूं। अब प्रैक्टिस भी किस प्रकार की? प्रैक्टिस के लिए ऐसा आलंबन हो जो सार्वजनीन हो। अगर आलंबन सार्वजनीन नहीं है, ये आलंबन तो अमुक संप्रदाय का है, ये आलंबन अमुक संप्रदाय का है, फिर कठिनाई खड़ी हो जाएगी, तो धर्म सार्वजनीन नहीं होगा। तो इसलिए शुद्ध धर्म के रास्ते चलने वाले के लिए आलंबन मिला, चित्त को एकाग्र करने के लिए आलंबन मिला। सांस आ रहा है, सांस जा रहा है। अब सांस न हिंदू है, न बौद्ध है, न जैन है, न ईसाई है, न ब्राह्मण है, न शूद्र है। अरे सांस सांस है भाई, आ रहा है, जा रहा है, हम उसे जान रहे हैं, उसे जानते हुए अपने चित्त को एकाग्र कर रहे हैं। और एकाग्र ही नहीं कर रहे चित्त को निर्मल करने का भी काम कर रहे हैं, क्योंकि इसको जानते जानते हम अगला कदम उठाने लगते हैं कि भीतर प्रज्ञा जागने लगती है, और भीतर प्रज्ञा जागने लगती है तो हमारा और कल्याण होने लगता है। तो समाधि का जो काम किया, धर्म के दूसरे चरण उठाने का जो काम किया, वो भी सार्वजनिक। सांस के सहारे सहारे हमने समाधि के क्षेत्र में आगे बढ़ने का काम शुरू किया। अब जब प्रज्ञा का काम करते हैं तो शरीर पर संवेदनाएं हो रही हैं, इस तरह की संवेदना है या उस तरह की संवेदना है। अब जो इस तरह की संवेदना है, न उसको हिंदू संवेदना कह सकते हैं, उस तरह की संवेदना है न उसे मुस्लिम संवेदना कह सकते हैं। अरे संवेदना संवेदना है, सबको एक जैसी होती है, शरीर का स्वभाव है, गर्माता भी है, पसीजता भी है, धड़कता भी है, फड़कता भी है, इसमें स्पंदन भी होते हैं, इसमें सिहरन भी होती है, इसमें पुलकन भी होती है, इसमें धूजन भी होता है, इसमें कंपन भी होता है, इसमें भारीपन भी होता है, दबाव भी होता है, दुखाव भी होता है, सबको होता है ना। केवल हिंदुओं को होता हो, मुसलमानों को ना होता हो, बौद्धों को ना होता हो, जैनियों को होता हो, अरे ऐसा नहीं ना, ब्राह्मणों को होता है, शूद्रों को नहीं होता है, वैश्यों को होता है, क्षत्रियों को नहीं होता है, ऐसा नहीं ना, सबको होता है भाई, सार्वजनिक है। और इन संवेदनाओं को देखते 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 हम अपने मन के स्वभाव को पलटते हैं। इन्हीं संवेदनाओं के प्रति मन ने ऐसा स्वभाव बना लिया था कि ये जब सुखद लगती हैं तो राग पैदा करे, दुखद लगती हैं द्वेष पैदा करे, उसका वो स्वभाव तोड़ रहे हैं। सुखद लगे तो भी हम राग नहीं पैदा करते, दुखद लगे तो भी हम द्वेष नहीं पैदा करते। तो विकारों से छुटकारा होता है, क्रोध से छुटकारा होता है, द्वेष से छुटकारा होता है, अहंकार से छुटकारा होता है, वासना से, भय से, ईर्ष्या से, मात्सर्य से, ये सार्वजनिक रोग है ना। जब किसी को क्रोध जागता है तो क्या लेबल लगाएंगे, कहेंगे ये हिंदू क्रोध है कि ये बौद्ध क्रोध है कि जैन क्रोध है कि मुस्लिम क्रोध है, और उस क्रोध की वजह से जो व्याकुलता आती है भीतर, उसे क्या लेबल लगाएंगे, ये आपके हिंदू व्याकुलता आई कि ये बौद्ध व्याकुलता आई कि जैन व्याकुलता आई। अरे सार्वजनिक रोग है ना, सबका एक जैसा रोग है। तो जो सबका एक जैसा रोग है, उस रोग की औषधि भी एक जैसी होनी चाहिए, सार्वजनिक होनी चाहिए। धर्म औषधि हमारे रोगों की, तो धर्म सार्वजनिक होना चाहिए। हमने सांस का सहारा लिया, सार्वजनिक है। हमने इन संवेदनाओं का सहारा लिया, सार्वजनिक है। हर आदमी अपनी संवेदनाओं को देखकर अपने मन के स्वभाव को पलट सकता है, विकारों से मुक्ति पा सकता है, आसक्तियों से मुक्ति पा सकता है। ये जो श्राव बहने लगे, विकार जागा और श्राव बहने लगा, एक रसायन बहने लगा भीतर, सबको एक जैसा है ना। और वो रसायन इतना अप्रिय लगा कि उसकी वजह से फिर विकार जागा, सबको ऐसा ही है ना। उसके प्रति आसक्ति हुई तो संवेदनाओं के प्रति आसक्ति हुई, सबको एक जैसी बात है ना। आदमी कहता है कि उसे व्यसन लग गया, कोई कहता है इसे शराब का व्यसन लग गया, भीतर जाकर के विपश्यना के सहारे जब सच्चाई को देखेंगे तो साफ मालूम होगा व्यसन शराब का नहीं है, व्यसन संवेदनाओं का है। शराब पीने से जो एक प्रकार की संवेदना होती है वो प्रिय लगने लगी, और बार बार अर्ज उठती है, बार बार जी चाहता है वैसे संवेदना फिर हो, वैसे संवेदना फिर हो। ये अंतर्मन में चल रहा है, ये ऊपर ऊपर वाला मन तो शराब फिर चाहिए, शराब फिर चाहिए, लगता है शराब का व्यसन है। अरे शराब का व्यसन नहीं भाई, इन संवेदनाओं का व्यसन है। जुए का व्यसन नहीं भाई, इन संवेदनाओं का व्यसन है। इसी तरह से क्रोध का व्यसन नहीं भाई, इन संवेदनाओं का व्यसन है। वासना का व्यसन नहीं, इन संवेदनाओं का व्यसन है। ये बात जितनी जल्दी जिसके समझ में आ जाए, वो इन संवेदनाओं को देखते 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 अपने व्यसन के बाहर निकल जाए। किस प्रकार शराब के व्यसन में डूबे हुए लोग
एक शिविर होता है, दो शिविर होता है, तीन शिविर होते हैं, कोई धमकी नहीं देता। घर जाकर शराब पिएगा तो तुझे वो कुंभी पाक नरक मिलेगा, कोई नहीं कहता। इन्हीं संवेदनाओं को देखते 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 अब दृष्टा भाव से देख रहा है, साक्षी भाव से देख रहा है, निसंग भाव से देख रहा है, तो उन संवेदनाओं का कोई असर नहीं होता। उनका व्यसन टूट रहा है, आसक्ति टूट रही है। अरे ये सबको होता है ना, तो हमारा सार्वजनिन रोग है और ये सार्वजनिन इलाज है। किसी को मलेरिया हो जाए तो क्या कहेंगे, ये हिंदू मलेरिया है। क्या कहेंगे, ये मुस्लिम मलेरिया है। अरे मलेरिया मलेरिया है भाई। और जब उसे कुनेन देंगे तो क्या कहेंगे, ये हिंदू कुनेन है, ये मुस्लिम कुनेन है। अरे कुनेन कुनेन है भाई। किसी को प्लेग हो गई तो क्या हुआ, उसे हिंदू प्लेग हो गई कि उसे मुस्लिम प्लेग हो गई। और जब उसे टेट्रासाइक्लिन का इंजेक्शन दिया गया तो ये हिंदू है कि मुस्लिम है। अरे कहाँ उलझ गए, बात समझें, धर्म सबका एक जैसा है। हमारा सार्वजनिक रोग है, हर व्यक्ति विकार जगह जगह के प्यागल व्याकुल होता है, पागल होता है, समझ नहीं रहा मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी हानि करता है। और ये विपश्यना द्वारा अपने भीतर धर्म जगाता है, सच्चाई को देखने की विद्या सीखता है। इन संवेदनाओं के प्रति जो आसक्ति है, इन संवेदनाओं को लेकर के जो राग जागता है, द्वेष जागता है, उससे छुटकारा पाता है, छुटकारा पाता है, सुखी हो जाता है। हर कोई सुखी हो जाएगा, जो चित्त निर्मल कर लेगा वही सुखी हो जाएगा। ये चित्त को निर्मल कर लेना, उसे सद्गुणों से भर लेना, ये किसी एक जाति की मोनोपोली नहीं, किसी एक संप्रदाय की मोनोपोली नहीं, किसी एक वर्ण की मोनोपोली नहीं। अरे कोई करे, जो अपने चित्त को निर्मल करे वही संत हो गया। कोई भगवान बुद्ध के पास आता है और उन्हें गालियां निकालता है, बुरी तरह गालियां निकालता है, और वो मुस्कुराते हैं, कहते हैं भाई तुम किसी के पास उपहार लेकर जाओ, भेंट लेकर जाओ, और वो व्यक्ति तुम्हारी भेंट नहीं स्वीकार करे तो तुम्हारी भेंट का क्या हो। तो कहते क्या हो, मेरी भेंट मेरे पास रह गई और क्या हो। बस यही बात हुई ना, तुम गालियों का उपहार लेकर हमारे पास आए, हमने तो नहीं स्वीकार किया, तुम्हारी भेंट तुम्हारे पास। अरे बड़ा समझदार आदमी था, बात समझ में आ गई। सारा जीवन हम क्या करते हैं, एक उपहार गाली की किसी को देते हैं, वो 10 देता है, हम 100 देते हैं, वो 1000 देता है, तू भी दुखी मैं भी दुखी। ये कैसा संत है, ये उपहार स्वीकार ही नहीं करता, तो बदले में ऐसा उपहार देता भी नहीं। अरे निर्मल चित्त हुआ ना, कोई हो जाए, भगवान महावीर के कान में कोई कील ठोंक रहा है, वो मुस्कराते हैं, पागल है, इसे होश नहीं है क्या कर रहा है। उनके मैत्री जागती है, करुणा जागती है। अरे ऐसी मैत्री करुणा जागने केवल जैनियों की मोनोपोली है कि बौद्धों की मोनोपोली है। अरे संत हो गया तो जागेगी ही ना। ईसा मसीह को टांग दिया गया, क्रॉस पर टांग दिया गया, हाथ में कील ठुकी है, पांव में कील ठुकी है, सिर में कील ठुकी है, जीवन का अंतिम क्षण नज़दीक है और उसके मन में करुणा जागती है, मैत्री जागती है। अरे इन्हें अपने किए का कर्म का फल न भोगना पड़े रे, इनको अपने कर्म का फल न भोगना पड़े रे। संत है ना, कोई हो, निर्मल चित्त हुआ तो संत हो गया ना। पैगंबर मोहम्मद साहब रोज अपनी मस्जिद में जाते हैं नमाज के समय, और रास्ते में एक बुढ़िया का घर है, उसको किसी बात को लेकर के उनके साथ मेल नहीं बैठता, उनके विचार उसे ठीक नहीं लगते, उनके उपदेश ठीक नहीं लगते। तो जब वो उसके घर के नीचे से निकलते हैं, वो ऊपर से कूड़े से भरी हुई टोकरी उन पर उड़ेल देती है, कचरा उनके सिर पर गिरता है, मुस्कराते हैं, उसे साफ करते हैं, चले जाते हैं, ये रोज का काम। एक दिन उस बुढ़िया ने कचरा नहीं फेंका, पैगंबर साहब ने देखा क्या हुआ तो उसके घर पर चढ़ गए। अरे बुढ़िया माई क्या हो गया, कहीं तो बीमार तो नहीं हो गई, अरे तू रोज इस समय मेरे सिर पर कचरा डालती है, तुझे आज क्या हो गया। संत है ना, चित्त निर्मल हुआ। मस्जिद में लोग बैठे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, किसी एक भाई को डायबिटीज का रोग होगा, बेचारे को जोर की पेशाब की हाजत हुई, अब रोक नहीं सका अपने आप को, वहीं नज़दीक बैठ कर कहीं पेशाब कर लिया, लोगों को गुस्सा आया, पीछे पड़े उसको मारने के लिए, पैगंबर साहब आती है, अरे क्या करते हो, अरे ये रोगी है बेचारा, पानी भर के बाल्टी साफ करते हैं, खुद साफ करते हैं। अरे संत है ना भाई, उनकी शिक्षा को मानने वाला वो नमाज पढ़ने वाला व्यक्ति हो या उनकी शिक्षा का विरोधी वो बुढ़िया हो, दोनों पर एक जैसी करुणा है ना। अरे करुणा करुणा है, किसी भी संत में आ जाएगी। वो जाति नहीं देखती, वर्ण नहीं देखती, गोत्र नहीं देखती, समझे धर्म को। हमारे यहाँ भी संत एकनाथ नदी नहा करके जा रहे हैं और किसी आदमी के साथ उनका संबंध बिगड़ा हुआ है, नहा करके गए, रास्ते से गुजर रहे हैं, उसने थूक दिया, मुस्कराए, फिर नहा कर गए, साफ कर लिया अपने बदन को, फिर गए, फिर थूक दिया, फिर नहा लिया, दो बार हुआ, चार बार हुआ, वो व्यक्ति पाँव पकड़ के बैठ गया, अरे आप जैसे संत, मैंने कितनी बड़ी भूल की। अरे संत संत है, संत ना हिंदू होता है, ना बौद्ध होता है, ना जैन होता है, ना मुस्लिम होता है, जिसका निर्मल हो गया चित्त और चित्त में करुणा जाग गई, मैत्री जाग गई, संत हो गया। कोई हो जाए तो भाई शील का पालन करे, कोई भी कर सकता है। समाधि का अभ्यास करे, सांस के सहारे सहारे सहारे, प्रज्ञा को जगाए, अपने शरीर की संवेदनाओं को देखते देखते, काया को देखते देखते कायानुपस्थान करे, काया पर क्या जाग रहा है इन वेदनाओं को देखते देखते वेदनानुपस्थान करे, चित्त को देखते देखते चित्तानुपस्थान करे, चित्त पर क्या जाग रहा है, उन दिनों की भाषा में उसे धर्म कहते थे, जो चित्त पर जागे सो धर्म, तो धर्मानुपस्थान करे। अरे यूं करते 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 भीतर का सारा प्रपंच समझ ले और यूं करते करते भीतर का सारा स्वभाव पलट ले तो कितना बड़ा कल्याण हो गया। ये कल्याण सबका हो सकता है और ये तब हो सकता है जब भीतर की सच्चाई देखनी सीखें। अपने यहां का संत नरसिंह मेहता जैसा भक्त कहता है कि शरीर सोधे बिना वो सार नहीं सांपड़े, शरीर सोधे बिना सार नहीं सांपड़े। अंदर से शरीर के भीतर सत्य का अनुसंधान किए बिना सार नहीं मिलता भाई, छिलके ही छिलके मिलेंगे। धर्म का सार लेना हो तो अंतर्मुखी होना पड़ेगा और ऐसा शुद्ध धर्म प्राप्त होगा, ऐसा शुद्ध धर्म जागे, देश की राजनीति में जागे, समाज नीति में जागे, व्यापार नीति में जागे, शिक्षा नीति में जागे, सर्वत्र जागे। बड़ा कल्याण होगा, बड़ा मंगल होगा, खूब कल्याण हो, खूब मंगल हो। पिछले अनेक दिनों की इस व्याख्यान माला में जाने अनजाने कोई भी ऐसी बात कह दी गई हो जिससे किसी भाई को, किसी बहन को बुरा लगा हो, उसे चोट पहुंची हो, तो करबद्ध क्षमा याचना, करबद्ध क्षमा याचना, करबद्ध क्षमा याचना। खूब मंगल हो, शुद्ध धर्म जागे और खूब मंगल हो, खूब कल्याण हो, खूब मंगल हो।
सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो ये रे।
सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो रे। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल हो रे। शुद्ध धर्म घर घर में जागे, शुद्ध धर्म घर घर में जागे, घर घर शांति समाए रे, घर घर शांति समाए रे। नर नारी हो धर्म बिहारी, सब नर नारी धर्म बिहारी, घर घर सुख छा जाए रे, घर घर मंगल होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे।